उदय नंदिनी को ऐसा करते देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो उसकी गर्दन पर किस करते करते उसकी कॉलर बोन पर आया और वो दोनों ही एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक हो चुके थे कि नंदिनी ने उदय को नहीं रोका और काफी देर तक नंदिनी को किस करने के बाद उदय उठकर बैठा। उसने देखा नंदिनी की गर्दन पर कई जगह पर उसके किस के मार्क्स नजर आ रहे थे और नंदिनी चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी और जिस तरह से उदय उसे किस करने के बाद रुका तो नंदिनी को समझ नहीं आया कि आखिर उदय उसे किस करते करते क्यों रुक गया। नंदिनी बेड से उठी और उदय को देखकर बिल्कुल पास आकर बोली, क्या हुआ उदय, आप रुक क्यों गए? उदय ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सच में ये सब कुछ सच में हो रहा है। नंदिनी उदय की बात सुनकर उसके करीब गई और उसने उदय के गाल पर किस किया और उसके गाल को हल्के से बाइट करने लगी। जैसे ही उदय ने उसके बाइट को अपने गाल पर फील किया तो उसको थोड़ा सा दर्द हुआ और उसके मुंह से एक सिसकारी निकली और नंदिनी उसके कान के पास जाकर बोली, अब तो आपको यकीन हो गया ना? उदय नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने तुरंत अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट को उतारकर वहीं फेंक दिया। नंदिनी की नज़र जैसे ही उदय के चेस्ट और उसके ऐप्स पर गई तो नंदिनी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके हाथ खुद बहुत उसके ऐप्स पर पहुंच गए और उसे वो बड़े ही प्यार से टच करने लगी और उसने अपने मन में कहा, इतने दिनों से ये सब मिस कर रही थी मैं, सच में कितनी पागल हूँ, इतनी नज़दीक रहकर भी कितने दूर थे हम, लेकिन अब नहीं। तभी उदय ने नंदिनी की साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसकी साड़ी को उतारने लगा। उसे ऐसा करते देखकर नंदिनी ब्लश करने लगी और थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ बिखर गए और नंदिनी ने जैसे ही खुद को बिना कपड़ों के उदय के सामने देखा वो अपने आप में ही सिमट गई। उदय उसे इस तरह शर्माते देखकर वो आगे बढ़ा और उसने स्विच बोर्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और लाइट्स ऑफ कर दी। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई तो नंदिनी ने उदय की तरफ देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। उदय मुस्कुराते हुए उसके करीब गया और उसके होठों पर किस करने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि इतनी लाइट में नंदिनी शायद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसलिए उदय ने जब लाइट्स ऑफ कर दी तो नंदिनी ने भी अपने हाथ उदय की पीठ पर रख लिए। वहां रूम में सिर्फ कुछ कैंडल्स की ही रोशनी आ रही थी जिससे वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को साफ देख पा रहे थे। उदय धीरे से नंदिनी के कान के पास जाकर बोला, मैसेज नंदिनी, उदय सूर्यवंशी, आर यू रेडी फाइनली? नंदिनी ने उदय के मुंह से ये बात सुनी और उसने नंदिनी उदय के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, यस ऑफ कोर्स। इतना बोलते ही उदय ने नंदिनी के हाथों को कसकर पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा दिया। वो नंदिनी के ऊपर आकर उसके गाल पर किस करने लगा। तभी नंदिनी की एक मीठी सिसकारी उदय के कान में पड़ी। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, उदय। उदय ने जैसे ही उसके मुंह से अपना नाम सुना तो वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और एक पल के लिए रुक गया। नंदिनी के आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद निकली और उदय ने जैसे ही उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखा तो वो उसकी आंखों के करीब गया और उसने उसी जगह पर बड़े ही प्यार से किस किया और उसके हाथ को अपने हाथ से रब करते हुए बोला, नंदिनी, आर यू ऑल राइट? नंदिनी ने जैसे ही उदय की बात सुनी तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बड़े ही प्यार भरी नजरों से उदय की तरफ देखने लगी। उदय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और नंदिनी की गर्दन पर जाकर धीरे से किस करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। वो कमरा उन दोनों की आवाजों और सिसकारियों से भर गया। नंदिनी उदय के इतने करीब खुद को महसूस करके बहुत ही ज्यादा खुद को लकी फील कर रही थी क्योंकि इस टाइम पर उदय ने नंदिनी को जितना ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया और वो उसे जितने प्यार से किस कर रहा था तो नंदिनी खुद को बहुत स्पेशल फील कर रही थी। वो दोनों अपने इस प्यारे से मोमेंट में खो चुके थे और थोड़ी ही देर में उदय नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और वो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे और उदय ने नंदिनी को अपनी बाहों में भरकर एकदम करीब कर लिया और वो दोनों गहरी नींद में सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और इप्सिता मंदिर से सीधे बाहर निकले और डिनर करने के लिए वहीं पास के बड़े से 5-स्टार होटल में चले गए। डिनर करके जब वापस आए तो काफी रात हो चुकी थी और दोनों ही काफी ज्यादा थक भी गए थे। इप्सिता जैसे ही घर पहुंची उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, बहुत थक गए हैं हम तो, आप भी चेंज कर लीजिए फिर हम लोग सो जाते हैं। वैसे भी कल सुबह पता नहीं हमें कितनी जल्दी उठना पड़ेगा और आपका राज्याभिषेक भी है, हम तो सच में कल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर खुश हो गया और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है पहले आप चेंज करके आइए। इतना बोलकर अभिमन्यु बेड पर बैठ गया। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे क्योंकि उसने आज काफी सारा काम किया था, इसलिए वो भी थका हुआ था। इप्सिता ने तो फिर थोड़ी देर आराम कर लिया था, पर अभिमन्यु को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। वो जैसे ही बेड पर लेटा तो उसकी आंखें बंद होने लगी और वो सो गया। जब इप्सिता अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई तो उसने देखा कि अभिमन्यु बिस्तर पर यूं ही लेटा हुआ है, उसके पैर जमीन पर हैं और वो बेड पर बैठा हुआ ही बड़ी ही गहरी नींद में सो गया है। इप्सिता उसे देखकर मुस्कुराई और उसके पास आकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, ये देखो होने वाले राजा सा कितनी ज्यादा थक गए हैं। अभिमन्यु उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इप्सिता ने जब देखा कि वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है तो उसने उसे जगाया नहीं और वो चुपचाप अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। उसने अभिमन्यु के शूज को निकाला और उसके पैरों को बेड के ऊपर रखकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और खुद उसके बगल में जाकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट गई। वो दोनों ही काफी ज्यादा थके थे, इसलिए थोड़ी ही देर में इप्सिता को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह 7 बजे ही उनके कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया और दरवाजे की आवाज सुनकर उन दोनों की ही नींद टूट गई। अभिमन्यु ने उठकर अपने रूम का दरवाजा खोला। उसने देखा सामने अर्पिता खड़ी हुई थी। उसने अभिमन्यु के सामने देखकर कहा, भाई साहब, हम आपको ही उठाने के लिए आए थे, आप लोग उठ जाइए क्योंकि आपके राज्याभिषेक के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको पता है अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन सारे मीडिया वाले अभी से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और मासा ने कहा है कि राज्याभिषेक में देरी नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लेट नहीं होंगे, हम बस थोड़ी देर में रेडी होकर आते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु सीधे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। इप्सिता बेड पर बैठी हुई थी। अर्पिता रूम के अंदर आई और बोली, भाभी सा, आपको भी राज्याभिषेक में शामिल होना होगा, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए, हम थोड़ी देर में आपके कपड़े और गहने आपको भिजवाते हैं। इप्सिता ने अर्पिता की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और वो भी बेड से उठ गई। अभिमन्यु थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आया और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए। इप्सिता ने अपना सिर हिलाया और इप्सिता अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अभिमन्यु फटाफट रेडी हुआ और वो अपने कमरे से बाहर निकल रहा था कि तभी अर्पिता उसके कमरे में आई और उसने कहा, भाई सा, भाभी सा कहाँ है? अभिमन्यु ने कहा, वो रेडी होने के लिए गई हैं, आप अभी तक क्यों नहीं तैयार हुई? अर्पिता ने कहा, पहले भाभी सा को तैयार कर दे, फिर हम भी तैयार हो जाएंगे।
अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, और मासा कहाँ है? अर्पिता ने कहा, भाई मासा अपने कमरे में है। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, हम उनसे जाकर मिल लेते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु मासा के कमरे की तरफ जाने लगा और अर्पिता सीधे अभिमन्यु के रूम में चली गई। वहीं समर्थ राज्याभिषेक की सारी तैयारी को देख रहा था। अभिमन्यु जैसे ही हॉल में आया तो उसने देखा कि अभिनव कनिका के साथ वहीं पर खड़ा था और नरेंद्र पल्लवी के साथ गुस्से से वहां आया था और सारे मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ देख रहा था। अभिमन्यु ने उन दोनों ओर सबकी तरफ देखा और उनके करीब जाकर बोला, चाचा सा, चाची सा, हम जानते हैं हमारे राज्याभिषेक को लेकर आप लोग हमसे खुश तो बिल्कुल भी नहीं हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन आप सबसे हम एक बात बहुत अच्छी तरह से बताना चाहते हैं कि हमें पूरी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग आज कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में ना सोचें। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही तो पल्लवी उसे घूरते हुए देखकर बोली, किस पूरी की सच्चाई की बात कर रहे हो आप? पल्लवी की बात सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, चाची सा, हमें लगता है अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो आपको चाचा सा से बात करनी चाहिए। चाचा सा, क्या आपने चाची सा को पूरी सच्चाई नहीं बताई? क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो सही तो नहीं था। इसलिए नरेंद्र अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही वहां से गुस्से से तिलमिलाता हुआ चला गया और उसे इस तरह अपने पैर पटक कर जाते देखकर पल्लवी उसके पीछे पीछे चली गई और अभिनव और कनक वहीं पर खड़े थे।